नमस्कार भारत, तारीख 8 जून दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। तुर्की में चुनावों के परिणाम आए, राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बहुमत गंवाया।
बिर पार्टीनिन इक्तिदार पार्टीसिनिन देवलेतिन बुतुन ओलानाकलारनि आर्कासिना
अलारक। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड गठबंधन करके लड़ेंगे चुनाव।
अभी केवल सीटों के बंटवारा जो असली चीज थी, जो हडिल था, उस पर निश्चय हो गया है और अब ये तय हो गया कि गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जा रही है।
मोदी की बांग्लादेश यात्रा से क्या हासिल हुआ, करेंगे विश्लेषण। फ्रेंच ओपन में जोकोविच को हराकर वावरिंका बने चैंपियन। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। तुर्की में चुनावों के करीब करीब सभी नतीजों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन की एकेपी पार्टी के लिए चुनाव वैसे नहीं रहे जैसी उसे उम्मीद थी। एर्दोगन चाहते थे कि उन्हें जबरदस्त बहुमत मिले ताकि वो तुर्की में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर सकें, लेकिन 13 साल में पहली बार एकेपी पार्टी को बहुमत गंवाना पड़ा। राष्ट्रपति एर्दोगन अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते थे। एर्दोगन ने 2003 में सत्ता बतौर प्रधानमंत्री संभाली थी और बीते साल वो राष्ट्रपति चुने गए थे। तुर्की में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने के लिए उन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत थी। कुर्द समर्थक HDP पार्टी पहली बार 10% से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रही है। G7 औद्योगिक देशों के नेताओं का कहना है कि वो रूस के खिलाफ तब तक प्रतिबंध जारी रखेंगे जब तक कि रूस यूक्रेन से समझौते की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं करता। G7 समूह के सालाना शिखर सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इस मसले का राजनयिक हल हो सकता है, लेकिन यूरोप, अमरीका और पूरी दुनिया क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों को लेकर सजग रहे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि प्रतिबंध समस्या को सुलझाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन अगर रूस मिंस्क समझौते पर बना रहता है तो प्रतिबंधों की जरूरत नहीं होगी। मर्केल ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि मिंस्क समझौते और प्रतिबंधों में संबंध है। इसी पर निर्भर है कि प्रतिबंध आगे बढ़ेंगे या उठा लिए जाएंगे। मिंस्क समझौता अमल में आएगा तो ये जो कड़े प्रतिबंध लुहांस्क, दोनेत्स्क और MH17 को गिराने के संबंध में लगाए गए थे उठा लिए जाएंगे। एंगेला मर्केल के शब्द। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। भारत ने पिछले दिनों गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव कराने को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत का कहना है कि गिलगित बल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। भारत का यह भी कहना है कि ये चुनाव इस इलाके को पाकिस्तान में मिलाने और क्षेत्र के लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार न देने का प्रयास है। गिलगित बल्टिस्तान को पहले पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था और इसका प्रशासन संघीय सरकार के तहत एक मंत्रालय चलाता था, लेकिन 2009 में पाकिस्तान की संघीय सरकार ने यहां एक स्वायत्त प्रांतीय व्यवस्था कायम कर दी जिसके तहत मुख्यमंत्री सरकार चलाता है। अब इलाके की अपनी असेंबली है जिसमें कुल 24 सदस्य निर्वाचित होते हैं। दक्षिण कोरिया में अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के 23 और मामलों की पहचान की है। इनमें से 17 मामले उसी अस्पताल से फैले हैं जहां पहले मरीज का इलाज हुआ था। अब तक दक्षिण कोरिया में मर्स से 87 लोग संक्रमित हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया में मर्स फैलने की शुरुआत एक कारोबारी से हुई थी जिन्हें सऊदी अरब की यात्रा पर मर्स का संक्रमण हुआ था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना, तुर्की में चुनावों के परिणामों की घोषणा हो गई है, लेकिन राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि उन्हें 2/3 बहुमत मिले ताकि वो तुर्की में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करा सकें। उन्हें बहुमत से 30 सीटें भी कम मिलती तो वो जनमत संग्रह करवा सकते थे, लेकिन चुनाव में उन्होंने सामान्य बहुमत भी खो दिया है। अब तक 99% वोट गिने जा चुके हैं। वहां क्या हुआ, पूरा ब्यौरा सुनिए अनुराग शर्मा से।
तुर्की में चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। 13 साल में पहली बार AKP पार्टी को बहुमत गंवाना पड़ा। राष्ट्रपति एर्दोगन अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते थे। एर्दोआन ने 2003 में सत्ता बतौर प्रधानमंत्री संभाली थी और बीते साल वो राष्ट्रपति चुने गए थे। तुर्की में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने के लिए उन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन इन चुनावों से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। तुर्की की संसद में बहुमत के लिए 276 सीटें चाहिए, लेकिन AKP के 258 सीटें जीतने की संभावना है। ऐसे में या तो AKP को अल्पमत की सरकार बनानी होगी या किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करना होगा। इस्तांबुल से BBC संवाददाता मार्क लोवेन का कहना है कि AKP के मुख्यालय में माहौल मायूसी वाला है, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। राष्ट्रपति एर्दोआन की पार्टी में अब तीखे सवाल पूछे जाएंगे और ये जानने की कोशिश होगी कि पार्टी की ऐसी हालत क्यों हुई। हालांकि प्रधानमंत्री अहमद दवतोग्लू का कहना है कि 41% वोट के साथ AKP ने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा,
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar, hepsine...
लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया, उनकी इच्छा सबसे ऊपर है, लेकिन तुर्की की शांति और स्थिरता को नुकसान ना हो इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। AKP तुर्की का आधार है और AKP अपना काम कर रही है। अहमद दवतोग्लू के शब्द। तुर्की में चुनाव नतीजे इसलिए भी हैरान करने वाले रहे क्योंकि कुर्द समर्थक HDP या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहली बार 10% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। इस पार्टी को संसद में पहुंचने के लिए 10% वोट पाना जरूरी था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सलाहुद्दीन देमिरतास ने कहा कि उनकी पार्टी को तमाम मुश्किलों के बावजूद जीत मिली है। उन्होंने कहा,
bir partinin iktidar partisinin devletin bütün olanaklarını arkasına alarak
सत्तारूढ़ दल ने हम पर हमले करवाए, उनके पास तमाम संसाधन थे, लेकिन हमें शानदार जीत मिली है। तुर्की के दबे कुचले और कामगार लोगों को कामयाबी मिली है। ये वो लोग हैं जो न्याय, शांति और आजादी चाहते हैं। सलाहुद्दीन देमिरतास के शब्द। दक्षिण पूर्वी तुर्की में 30 साल से अलग कुर्दिस्तान के लिए जारी संघर्ष में 40,000 लोग जान गंवा चुके हैं। BBC संवाददाता का कहना है कि इन नतीजों से तुर्की के 1.5 करोड़ कुर्द लोगों को राष्ट्रीय राजनीति में आवाज मिलने की उम्मीद है। HDP के एक समर्थक का कहना था कि ये उनके लिए शानदार दिन है। HDP समर्थक कह रहे थे कि जो दबे कुचले थे उनकी जीत हुई है। जीत उनकी हुई है जो शांति और सद्भाव चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अत्याचारी कितने ताकतवर हैं, आज जीत का जश्न हम मना रहे हैं। HDP वामपंथी, पर्यावरणवादी और समलैंगिकों को अपनी ओर खींचने में भी कामयाब रही। एक अन्य HDP समर्थक का कहना था कि नतीजों का मतलब होगा कुर्दों के लिए तुर्की में एक नई सुबह। HDP समर्थक कह रहे थे कि 10% की सीमा पार करना कुर्द लोगों के लिए बड़ी बात है। हमारी पार्टी के पास राजनीतिक ताकत होगी और वो इसका इस्तेमाल तब कर पाएगी जब जरूरत होगी। मध्य पूर्व की अस्थिरता को देखते हुए तुर्की बेहद अहम है। उतना ही अहम है ये कि तुर्की किस रास्ते पर चलता है और इसका लोकतंत्र क्या आकार लेता है। ये चुनाव तुर्की में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत कर सकते हैं। ये चुनाव तुर्की में ध्रुवीकरण करने वाले राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं।
तुर्की के चुनावों के परिणाम आए, राष्ट्रपति एर्दोआन की पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत उसने गंवा दिया। रिश्वत देने के सबूत सामने आने पर रूस और कतर 2018 और 2022 के फुटबॉल विश्व कप गंवा सकते हैं। फीफा के एक बड़े अधिकारी डोमिनिक स्काला ने यह बात कही है। दोनों देशों ने मेजबानी हासिल करने में कोई गलत काम करने से इनकार किया है और स्काला भी मानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के सबूत नहीं देखे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर ऐसा सबूत सामने आता है कि कतर और रूस को मेजबानी सिर्फ खरीदे गए वोटों से मिली तो उनकी मेजबानी रद्द हो सकती है। स्काला ने ऐसी ही टिप्पणी 2013 के अंत में भी की थी, लेकिन हाल में ही फीफा से जुड़े हुए जो घटनाएं सामने आई हैं उनके संदर्भ में इसे ज्यादा गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आइए ले चलते हैं आपको भारत की खबरों में। बिहार में जनता परिवार यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले इन दलों के विलय की बात हुई थी और एक ही पार्टी के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मध्यस्थता में हुई बैठक के बाद समाजवादी पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने इसका ऐलान किया। समीर आत्मज मिश्र से रिपोर्ट सुनते हैं।
बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर RJD और JDU में चली आ रही खींचतान पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। बिहार में जनता परिवार के नेता अब एक बैनर तले नहीं बल्कि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के बीच कई दिनों से चली आ रही इस तनातनी पर पूर्ण विराम लगाने का काम हुआ दिल्ली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह के घर पर। रविवार को दोपहर बाद हुई बैठक में जो कुछ तय हुआ उसकी जानकारी सपा नेता रामगोपाल यादव ने दी।
ये निश्चित हुआ है कि आरजेडी एवं जेडीयू की तरफ से तीन तीन सदस्यों की एक समिति सीटों के बंटवारे को तय करेगी तथा दोनों दलों के नेता सीटों को अंतिम रूप देंगे और शीघ्र ही इस कार्रवाई को संपन्न कर लिया जाएगा। अभी केवल सीटों के बंटवारा जो असली चीज थी, जो हर्डल था, उस पर निश्चय हो गया है और अब ये तय हो गया कि गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा।
रामगोपाल यादव ने ये भी बताया कि सीटों का बंटवारा तय करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में दोनों दलों के तीन तीन सदस्य होंगे। बैठक के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार भी मौजूद थे। रविवार को नीतीश कुमार बैठक में भाग लेने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। लगभग एक घंटे की मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई इस बारे में तो बहुत जानकारी नहीं मिली, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कांग्रेस का साथ मिल सकता है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए।
नीतीश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। पहली बार हम लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 बार नीतीश कुमार जी का समर्थन किया है, जिसकी तारीख में नीतीश जी की सरकार को कांग्रेस का समर्थन है बिहार में, इसलिए राहुल जी से मिले हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन पर चुटकी ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडे कहते हैं,
यह उसी प्रकार का बयान है जैसे आज से 2 महीना पहले मुलायम जी की आवाज के नेताओं ने उन्हें अध्यक्ष बनाने के संदर्भ में बयान दिया था, जैसे वो असफल हो गया वैसे ही ये घोषणा भी असफल होगी, क्योंकि दोनों दल और दोनों दलों के जो नेता हैं उनको एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, दोनों विपरीत ध्रुव के लोग।
राजनीतिक हलकों में गठबंधन को नीतीश कुमार के लिए झटका बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव अब नीतीश के नाम पर नहीं बल्कि गठबंधन के नाम पर लड़ा जाएगा। जबकि जानकारों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम किसका है, गठबंधन का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं,
जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है कि वो चीजें लगभग तय हैं, लेकिन इसको अनाउंस अभी नहीं किया गया है, क्योंकि आज की तारीख में नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो गठबंधन दल के नेता बनते हैं तो उनकी जो विश्वसनीयता है या उनकी जो प्रामाणिकता है वो किसी और नेता से ज्यादा है। वैसे भी लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के चीफ हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए उनके अगर दल में भी देखा जाए तो जितने और उम्मीदवार हो सकते हैं कोई ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार की बराबरी कर सके।
बहरहाल गठबंधन ही सही, इसी बहाने जनता परिवार की एकता टूटने से तो बची गई है, लेकिन सवाल उठता है कि ये कब तक रहेगा। देखना यह है कि क्या सीटों के बंटवारे पर समिति की राय सर्वोपरि होगी। जानकारों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तब तो गठबंधन तले जनता परिवार के चुनावी मैदान में आने की उम्मीद बनती है, अन्यथा परिवार पुराने इतिहास को फिर दोहरा सकता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट आए हैं। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने बांग्लादेश में प्रवासी भारतीयों के समूह को संबोधित किया। उन्होंने लैंड बिल एग्रीमेंट को दिलों को जोड़ने वाला समझौता बताया और बांग्लादेश के विकास पर खुशी जताई।
बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या ये सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है, ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता।
प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि इस 2 दिन की यात्रा के बाद एशिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बारीकी से इसका पोस्टमार्टम करेगा, तराजू लेकर बैठेंगे कि क्या खोया क्या पाया। और एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो लोग सोचते थे कि हम पास पास हैं, अब दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। समीर आत्मज मिश्र ने पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे से बात की और पूछा कि मोदी की इस यात्रा से बांग्लादेश और भारत को क्या मिला और जो मोदी कह रहे हैं वो क्या सही है।
जहां तक कि लैंड बाउंड्री का प्रश्न उठता है, ये तो बहुत दिनों से स्थगित मामला था और बांग्लादेश ने तो इसको 1974 में ही इसका रेटिफाई कर लिया था, और हमारे यहाँ ही ऐसा हुआ कि इसमें जमीन के अख्तियार करने का और जमीन को दूसरे के देश को देने का प्रश्न है, इसलिए संविधान में संशोधन होने की आवश्यकता है। तो हमने इस तरह की विषमताएं पैदा की, एक आसान मामले को और भी दुष्कर बनाया और इतना समय लिया।
जिस तरह से बांग्लादेश के साथ संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो उसमें किस तरह का नयापन आप देखते हैं जो कि प्रयास पहले नहीं हुए थे या पहले की सरकारों ने नहीं किया था?
बहुत सूझबूझ दिखाई गई है संबंधों को बहुत नजदीक लाने का, लेकिन प्रतीकों से भरी हुई यात्रा थी, इसलिए एक वातावरण की अच्छी सृष्टि हुई है, लेकिन उस वातावरण से फायदा उठा के ठोस कदम जो लिए जा सकते थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में इसके ऊपर ध्यान जाएगा।
आर्थिक संबंधों की बात की जाए, भारत के कुछ उद्योगपति वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट भी लगाएंगे, कितना फायदा भारत को होगा और कितना बांग्लादेश को होगा?
बांग्लादेश में ऊर्जा की कमी को दूर करने में हमारे उद्योगपति पावर प्रोजेक्ट लगाएं और उसको जल्दी अमल में लाएं, उनकी जनता को इससे राहत पहुंचेगी और हमारे पक्ष को भी इससे फायदा होगा। मैं ये नहीं सोचता हूं कि हमारे देश में उनका पूंजी निवेश हो सकता था।
सार्क को एक तरह से कहा जाए कि उसको लेकर के एक नई बात की जिसमें पाकिस्तान को एक तरह से इग्नोर किया है, इस रणनीति को किस तरह से देखा जाए?
मैं सोचता हूं कि ये रणनीति ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो सबसे बड़े मुल्क हैं दक्षिण एशिया में, और उनके सहयोग के बिना, उनके आपस के व्यापार को ध्यान में लाए बिना कोई भी सार्क में बहुत बड़े पैमाने पर प्रगति नहीं हो सकती है। लेकिन सब रीजनल सहयोग और रीजनल सहयोग साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिलके कुछ चीज़ें कर सकें, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो कोई वजह नहीं है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें लागत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन सारे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अभाव है और इस लागत का अधिकांश हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, तो ये कोई इतना आसान मामला नहीं है।
इस यात्रा के दौरान चूंकि बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी ना तो बांग्लादेश की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो ये इस चीज को आप कितना उचित देखते हैं?
इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि भारत ने जो बांग्लादेश के लिए किया उस समय और भारत में जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के संग्राम के सफल होने के लिए जो कामनाएं थी उसके ऊपर काफी जोर डाला गया है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की किसी नेता ने कितना किया है। इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिया और उस निर्णय का क्या असर रहा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को की सफलता के लिए, ये तो इतिहास की बात है, उसको कोई भुला नहीं सकता है।
पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे बता रहे थे कि मोदी की इस यात्रा से भारत को क्या मिला और आगे क्या हो सकता है। यहीं पर कार्यक्रम में अखबारों को शामिल कर लेते हैं। अनुराग शर्मा, अखबार आप पढ़ चुके हैं, शुरुआत मोदी की यात्रा से करें या किसी और की खबर से?
जी मोहला जी, आज के ज्यादातर अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण कहता है, बांग्लादेश से पाक को पाठ। अखबार का कहना है कि मोदी ने बांग्लादेश से पाकिस्तान पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अमर उजाला लिखता है कि मोदी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। अखबार का कहना है कि मोदी ने कहा कि 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ना ही सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए काफी है। नई दुनिया ने पहले पन्ने पर ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा करते नरेंद्र मोदी का फोटो छापा है।
और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जनसत्ता अखबार है और आजकल कार्टून कम छपते हैं, जनसत्ता में आज का जो कार्टून है वो इसी पर है। इरफान का कार्टून है और इसमें शेख हसीना और नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं और कॉर्नर में कोने में बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं और शेख हसीना मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप इनमें से क्या बजाना पसंद करेंगे,
क्योंकि मोदी अक्सर यात्राओं के दौरान कुछ ना कुछ किसी चीज़ पर आतजमाने के लिए जाने जाते हैं। बात घरेलू राजनीति की करते हैं, सभी अखबारों की नज़र है घरेलू राजनीति पर भी, बिहार चुनाव को लेकर खासतौर पर बात हो रही है। अमर उजाला कहता है कि न सीएम तय न सीटों को बंटवारा, पर लालू और नीतीश साथ साथ। नई दुनिया लिखता है, नतीजा नहीं समिति लेकर लौटे नीतीश। दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे के लिए जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। हिंदुस्तान और जनसत्ता की हेडलाइन करीब करीब एक जैसी ही है, नीतीश लालू मिलकर लड़ेंगे। हालांकि हिंदुस्तान ने एक फार्मूला भी बताया है कि इन चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में क्या फार्मूला हो सकता है। फार्मूला यह है कि दोनों दल 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकता है कि नीतीश हो, लेकिन
ज्यादा सीटों पर सहमति बनी नहीं है कि अभी पेच है थोड़ा सा।
जी बिल्कुल पेच है, ये एक फॉर्मूला उन्होंने पेश किया कि हो सकता है इस फॉर्मूले को लेकर ही आगे बढ़े दोनों पार्टियां कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश हो लेकिन ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। नवभारत टाइम्स ने बड़ी सी सुर्खी दी है सीएम कैंडिडेट पर पेंच कायम। नवभारत टाइम्स ने दोनों नेताओं की हाथ में हाथ लिए तस्वीर भी छापी है जो पिछले साल की है। रविवार को दोनों नेता बड़े समय के बाद साथ साथ बैठे। दैनिक जागरण लिखता है कि बिहार की समाजवादी कुनबे की सियासी हांडी चढ़ नहीं पा रही है। दैनिक जागरण ने यह भी लिखा है कि मुलायम सिंह यादव ने इस विवाद में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा मोहनलाल जी मानसून कब आएगा और कितना आएगा ये भी हिंदी अखबारों की नज़र में है। नई दुनिया के मुताबिक स्काई मेट ने दावा किया है कि मानसून सामान्य रहेगा। वहीं दैनिक भास्कर ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है कि बारिश 12% कम होगी। बाबा रामदेव के अपने देसी नूडल्स लाने की बात भी करीब करीब सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है लेकिन दैनिक जागरण ने अंदर के पन्ने पर एक खबर दी है, नूडल्स छोड़िए पोहा खाइए जनाब। कल ट्विटर पर दिन भर विश्व पोहा दिवस ट्रेंड कर रहा था, ये उसको लेकर बात है। अंग्रेजी अखबारों का जिक्र करें तो बार्सिलोना की चैंपियंस लीग जीतने और डायचे बैंक से अंशु जैन के इस्तीफे की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और अब कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं बीबीसी संवाददाता वसुतुल्ला खां की डायरी जिसका इंतजार आप सभी श्रोताओं को रहता है।
साहब ये दोनों बिल्कुल हेड़े हो गए हैं, ऐसे तो मेंटल अस्पताल में एक साथ रहने वाले पागल भी नहीं करते जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं। साहब मेरी बेटी के दिल में सुराख था, 2 साल पहले मैं उसे इलाज के लिए वहाँ ले गया, 15 दिन रहना पड़ा। क्या डॉक्टर, क्या मरीज़, क्या मरीज़ों को देखने वाले सबको जब पता चलता था कि मैं कहाँ से आया हूँ तो मेरी बेटी के लिए दुआ करते थे और मुझे ज़बरदस्ती खाना और फल भी खिलाते थे। और साहब जब वहाँ के गुलकार, शायर, लिखारी और अफसर लोग हमारे यहाँ आते हैं तो सब वापस जाके बोलते हैं कि हमने तो ऐसा मुल्क और ऐसे लोग नहीं देखे, हमें तो कुछ और बताया गया था मगर ये तो हम जैसे ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मानो जैसे अपने ही घर में हम हों। साहब आपको क्या बताऊँ, मेरी बेटी सिर्फ वही फिल्में देखती है जो वहाँ बनती हैं। यहाँ जितने भी FM रेडियो स्टेशन हैं उन्हीं के गाने चलाते हैं और उधर जो मेरी खाला रहती है ना वो हमेशा फ़ोन पे यही बताती हैं कि हम तो बस तुम्हारे TV ड्रामे देखते हैं, तुम्हारे यहाँ की गज़लें और कव्वालियाँ सुनते हैं। जब सब ठीक है तो फिर पंगा कौन कर रहा है? दोनों तरफ का मीडिया सिर्फ आग ही क्यों देखता है? दोनों तरफ के सियासतदान मुस्कुराते हुए हाथ मिला के पहले फोटो क्यों खिंचवाते हैं और वापस जाके एक दूसरे को गालियां क्यों देते हैं? इतनी ही नफरत है तो फिर प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति की बकवास ना करें और इतनी ही मोहब्बत है तो फिर एक दूसरे की लगाई बुझाई ना करें। सब बाकी दुनिया जैसे रह रही है वैसे हम क्यों नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते तो फिर एक दफ़ा बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते कि एक दूसरे को ख़त्म करना है? अजीब लोग हैं साहब, जिंदा भी रहना चाहते हैं और एक दूसरे को मारना भी चाहते हैं। वैसे साहब कभी आपने ज़िंदगी में सुना कि दो घर जिनकी दीवारें मिली हुई हों उनमें रहने वाले सुबह एक दूसरे को गालियां दें, दोपहर को एक दूसरे को लतीफे सुनाएं और जप्पियां डालें और रात को फिर एक दूसरे की माँ बहन एक करके सो जाएं और आँख खुलते ही इस पर झगड़ने लगें कि तेरी बकरी मेरी झाड़ी के 3 पत्ते क्यों खा गई, और इस झगड़े की थोड़ी देर बाद बच्चा होने की खुशी में एक घर से दूसरे घर मिठाई जाए और उसके आधे ही घंटे बाद वो फिर गुत्थम गुत्था हो जाए कि तेरा लौंडा मेरी लौंडिया को दूसरी बार देख के मुस्कुराया क्यों? मुझे तो लगता है साहब कि दोनों तरफ के पागल खानों को भी पागल ही चला रहे हैं। जिन्हें अंदर होना चाहिए वो खुले फिर रहे हैं और जिन्हें आज़ाद घूमना चाहिए वो पागल खानों में बंद हैं। ऐसा कब तक चलेगा साहब? मैंने अब्दुल्ला पान वाले से कहा कि मुझे तुम्हारी इतनी लंबी तकरीर सुन के भी कख समझ में नहीं आया कि तुम किसकी बात कर रहे हो। अब्दुल्ला ने मुझे आश्चर्यजनक नज़रों से देखते हुए कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप सब समझ रहे हो। वाकई साहब आपको पता नहीं चला कि मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ? बुरा ना मानना साहब, मुझे तो आप भी इन दोनों की तरह ही लगते हो जो सब कुछ समझते हुए भी ऐसे जाहिर करते हैं जैसे कुछ नहीं समझ रहे।
वसुतुल्ला खां की डायरी के बाद अब उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
आज जिन खबरों पर नजर रहेगी उनमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव और भारत के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर फिर से सुनवाई शामिल है। भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में आज विधानसभा चुनाव है। इलाके के सभी जिलों में पाकिस्तानी सेना को तैनात किया गया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट आज से फिर से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई शुरू करेगा। इस मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की ये मांग ठुकरा दी थी कि इस मामले की सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद हो। भारत का मंगलयान से संपर्क आज टूट जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती और मंगल के बीच में सूरज आ जाएगा। हालांकि 22 जून के बाद इस अंतरिक्ष यान से संपर्क फिर जुड़ जाएगा। दिल्ली में आज से ITU स्टेशन से मेट्रो की शुरुआत होगी। ये स्टेशन हेरिटेज लाइन का हिस्सा है, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद स्टेशन भी हैं। ये दोनों स्टेशन 2016 में शुरू होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश पहुंच रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं के नतीजों का ऐलान भी आज दोपहर होगा। मानसून आज कर्नाटक पहुंच सकता है। आज सिंगापुर में 9 लोगों को याद किया जाएगा जो शुक्रवार को मलेशिया में आए भूकंप में मारे गए। जर्मनी के एल्माओ कैसल में G7 देशों के नेताओं की बैठक आज भी जारी रहेगी। आज बैठक में यूक्रेन के हालात पर चर्चा हो सकती है। आज ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA की बैठक भी होगी।
और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। रोला गैरा के लाल बजरी पर कल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का फाइनल खेला गया और इस मुकाबले में आमने सामने थे शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के 8वीं वरीयता हासिल स्टेन वावरिंका। अपनी बेहतरीन सर्विस और शानदार रिटर्न के दम पर जोकोविच ने पहला सेट 6-4 से अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद वावरिंका ने जबरदस्त वापसी की और दूसरा सेट 6-4 से अपने नाम किया और उसके बाद तीसरे सेट को भी 6-3 से अपने नाम कर जोकोविच को हैरानी में डाल दिया। चौथे सेट में जब एक समय स्कोर 3-3 से बराबरी पर था, तभी जोकोविच ने नेट पर शानदार खेल दिखाया। और इसके बाद जब स्कोर 4-4 से बराबरी पर था, तब वावरिंका ने जोकोविच की सर्विस को ब्रेक किया। इसके बाद स्कोर 5-4 हो गया और अंततः स्टेन वावरिंका ने जोकोविच को चौथे सेट में 6-4 से हराकर रोला गैरा की लाल बजरी पर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वावरिंका ने 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। वहीं चीन में संपन्न एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की टिंटू लुका ने आखिरकार महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तो उनसे बहुत पहले की जा रही थी, लेकिन कामयाबी उन्हें अब जाकर मिली और उन्होंने कल 2:01.53 के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये किसी भी बड़े स्तर की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनका पहला स्वर्ण पदक है। उधर इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब 8वीं वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने 3री वरीयता हासिल डेनमार्क के यानो योर्गेंसन को 16-21, 21-19, 21-7 से हराया। इससे पहले मोमोता ने इसी साल सिंगापुर ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब 6ठी वरीयता हासिल थाईलैंड की रत्चानो किंतनोन के नाम रहा। उन्होंने फाइनल में जापान की यूई होशिमोतो को 21-11, 21-10 से मात दी।
और अब इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार अनुराग शर्मा से।
BBC समाचार। तुर्की में चुनावों के करीब करीब सभी नतीजों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन की पार्टी को बहुमत गंवाना पड़ा है। G7 औद्योगिक देशों के नेताओं का कहना है कि वो रूस के खिलाफ तब तक प्रतिबंध जारी रखेंगे जब तक कि रूस यूक्रेन से समझौतों की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं करता। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। भारत ने पिछले दिनों गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को लेकर आपत्ति जताई थी। दक्षिण कोरिया में अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के 23 और मामलों की पहचान की है। इनमें से 17 मामले उसी अस्पताल से फैले हैं जहां पहले मरीज का इलाज हुआ था। अब तक दक्षिण कोरिया में मर्स से 87 लोग संक्रमित हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने देश के वकीलों से माफी मांगी है। उन्होंने माफी एक पुलिस अफसर के एक वकील को जूता मारने के बाद मांगी है। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संग में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। एक घंटे बाद 8 बजे आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है। तब तक मोहनलाल शर्मा आपसे अनुमति मांगता है। नमस्कार।